नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत ने इस बात पर बल दिया है कि स्थायी और गैर स्थायी श्रेणियों का विस्तार करके सुरक्षा परिषद में सुधार करने का अब समय आ गया है, ताकि ये संस्था वैश्विक संक्षोभ से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो सके। केन्या में प्रदर्शनकारियों द्वारा संसद भवन पर हमले और उसका एक हिस्सा जलाए जाने के बाद पुलिस कार्रवाई में 5 प्रदर्शनकारी मारे गए। विश्व आज मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। धनीदी देसिंगू और श्रीहरि नटराज ने यूनिवर्सिटी विटी कोटा के माध्यम से पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें ध्वनिमत निर्वाचित घोषित किया गया। कांग्रेस ने इस पद के लिए के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था। पार्टी ने अध्यक्ष पद के निर्वाचन के दौरान मत विभाजन की मांग नहीं की। अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ओम बिरला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। इससे पहले आज सुबह जब सदन की बैठक शुरू हुई तो प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने श्री बिरला को अध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष की ओर से शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया ने श्री सुरेश के पक्ष में प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने श्री बिरला को बधाई देते हुए कहा कि श्री बिरला के दूसरे बार निर्वाचित होने से आज इतिहास बन रहा है। उन्होंने कहा कि सदन अगले 5 वर्षों तक उनके मार्गदर्शन का लाभ उठाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद के रूप में श्री बिरला का काम नए सदस्यों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। उन्होंने कहा कि पिछली लोकसभा ने श्री बिरला के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण कानून पारित किए। श्री मोदी ने कहा कि सदस्यों के आचरण और उनकी जवाबदेही से संसदीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्री बिरला को बधाई देते हुए कहा कि ये सदन लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने श्री बिरला को सदन के सुचारू संचालन में विपक्ष के समर्थन का आश्वासन दिया। श्री गांधी ने कहा कि सहयोग विश्वास के आधार पर होता है और विपक्ष को अपने विचार रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि विपक्ष को अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि निष्पक्षता एक अध्यक्ष की प्रमुख विशेषता होती है और उन्हें उम्मीद है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी उचित सम्मान दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने 17वीं लोकसभा में विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कानूनों को सदन में उचित चर्चा के बाद पारित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की 4 सीटों के लिए आज मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 27.01%, मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 18.31%, कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 24.17% मतदान हुआ, जबकि नासिक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 23.16% मतदान किया गया। आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चुनाव की गिनती 1 जुलाई को होगी। इन 4 निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त होने वाला है। भारत ने इस बात पर बल दिया है कि स्थायी और गैर स्थायी श्रेणियों का विस्तार करके सुरक्षा परिषद में सुधार करने का अब समय आ गया है, ताकि ये संस्था वैश्विक संघर्षों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो सके। सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा के दौरान भारत के प्रतिनिधि प्रतीक कुमार माथुर ने कहा कि सुरक्षा परिषद को भी अपनी विश्वसनीयता साबित करने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत है। 15 देशों की सुरक्षा परिषद में केवल 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास वीटो का अधिकार है। शेष देश सदस्य 2 साल की अवधि के लिए गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुने जाते हैं और उनके पास वीटो का अधिकार नहीं होता है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार तथा उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियों का अनुकूल है। मौसम विभाग ने कहा कि कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कल तक भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। अगले 3 से 4 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और ओडिशा में भी ऐसे ही स्थिति बनी रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब में आज भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने की संभावना है। विश्व आज मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देशभर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए रैलियां तथा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष का विषय है साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। इस अवसर पर आज सुबह श्रीनगर में वॉक फॉर यूथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा मणिपुर में भी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य पुलिस द्वारा आयोजित एक मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ मनाये जा रहे इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने देशभर में 12 जून से आज तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा विषय से पखवाड़ा भी आयोजित किया है। इसके लिए एनसीबी ने मादक पदार्थों से होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 26 जून को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को अमरीकी रक्षा विभाग से संबंधित गुप्त दस्तावेज हासिल करने और उनका खुलासा करने के संयंत्र के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अपरिहा कर दिया गया है। अमरीका में उत्तरी मैरियाना द्वीप समूह के स्थेपीय न्यायालय में असांज के मामले की सुनवाई हुई। अमरीकी न्यायालय ने ब्रिटेन की जेल में 62 महीने की उनकी कैद को सजा के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें सजा सुनाते हुए न्यायाधीश मैंगलोना ने कहा कि अमरीका की सरकार 2010 से विकिलीक्स जासूसी मामले में असांज के विरूद्व आगे मुकदमा नहीं चलाने के लिए राजी हो गई है। इससे पहले असांज को अमरीका के न्यायालय में मुकदमा की सुनवाई के लिए अमरीकी न्याय विभाग के साथ समझौते के तहत ब्रिटेन की जेल में छोड़ दिया गया था। इस समझौते में यह स्थायी शर्त शामिल थी कि 14 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अब असांज अमरीका की हिरासत में नहीं रहेंगे और स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकेंगे। केन्या में प्रदर्शनकारियों द्वारा संसद भवन पर हमले और उसका एक हिस्सा जलाए जाने के बाद पुलिस कार्रवाई में 5 प्रदर्शनकारी मारे गए। संसद द्वारा एक वित्त विधेयक के पारित किए जाने के बाद देशभर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस विधेयक के जरिए सरकार ने कई करों में वृद्धि की है। दुनिया के कई देशों ने केन्या में हिंसा पर चिंता व्यक्त की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। कथित अबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले पर कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी थी। श्री केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की अवकाश पीठ को बताया कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए नई याचिका दायर करने के लिए वर्तमान याचिका वापस लेना चाहते हैं। तैराकी में धनीदी देसिंगू और श्रीहरि नतराज ने यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। इस संबंध में भारतीय तैराकी महासंघ ने घोषणा की। फरवरी में 14 वर्षीय धनीदी ने फिलीपींस में आयोजित 11वीं एशियाई ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में 4था स्थान हासिल किया। धनीदी महिला को 200 मीटर फ्रीस्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है। उन्होंने वर्ष 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर, भारत और मलेशिया में आयोजित स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। वहीं 200 मीटर फ्रीस्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक शीर्ष तैराक नतराज ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेकस्टॉक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यूनिवर्सिटी कोटा का उद्देश्य दुनिया भर से एथलीटों को अनुमति देते हुए ओलंपिक में खेल की विविधता को बढ़ाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।